चूत वाले चुत गई अपने भाई के सामने नंगी होकर। ये कहानी है। मेरा नाम नाजिया खान है और मेरी उम्र 37 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और शौहर कतर में जॉब करते हैं। हम दोनों का एक बेटा भी है। ससुराल वालों से बनती नहीं है तो अपने माँ बाप के घर पर ही रहती हूँ। मायके में अम्मी अब्बू दो भाई एक भाभी हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आजकल कहाँ माँ बाप शादीशुदा बेटियों को अपने यहाँ रखते हैं। मेरा शौहर आखिरी बार भारत 3 साल पहले आए थे। तब से अब तक मैं चूत वाली उनका इंतज़ार ही कर रही हूँ। इस तरह बार बार कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही थी। शोहर के साथ झगड़े होने लगे थे और मेरे अब्बू ने मेरे शोहर नावेद से बोल दिया कि देखो नावेद, या तो तुम हिंदुस्तान आ जाओ या फिर नाजिया और अपने बेटे को कतर ले जाओ। अब्बू के इस बात पर नावेद भड़क गए और उन्होंने यह कहकर फ़ोन काट दिया, ठीक है आप लोग यही चाह रहे हैं तो मैं तलाक ही दे देता हूँ। यह सुनकर सारे घर में बहुत टेंशन का माहौल हो गया। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आशु आया। उसका नाम आसिफ है लेकिन हम उसे आशु बुलाते हैं। मुझे रोते हुए देखकर आशु बोला, आपा आप रो क्यों रही हैं, रोएगा तो वह, आपको तो एक से एक अच्छे लड़के मिलेंगे। ये सुनता ही पता नहीं क्यों रोते रोते मेरी हंसी छूट गई। जब मैं हंसी तो आशु बोला, क्या हुआ हंस क्यों नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही कुछ नहीं। फिर उसे अम्मी ने आवाज़ दे दी। आशु के जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे लगा कि कह तो ये सही रहा है। ये सोचते हुए मैं उठी और अपने चेहरे और भरे हुए बदन को शीशे में देखने लगी। पता नहीं मुझे खुद से ये लगा कि आशु सही बोल रहा था। अब दोस्तों इस कहानी को पढ़कर आपको तय करना है कि मैं हॉट हूँ या नहीं। मेरा फिगर, बूब्स 36D एकदम किसी सख्त आम के आकार जैसे हैं। मेरे दोनों मम्मों पर भूरे रंग के अंगूर जैसे निप्पल्स इनकी सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। मेरी कमर 32 इंच और पिछाड़ी 40 की है। मैं बहुत दिलकश बनती हूँ। अब वाकया कुछ हुआ यूँ कि मेरे अब्बू की सारी फैमिली को खाला की बेटी की शादी में बिहार में सिवान जाना था। मेरे जाने का ज़रा मन नहीं था पर सबने बोला कि यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी। उधर शादी का माहौल था, सब किसी न किसी काम में बिजी थे। मैं भी चली गई। मैंने नोटिस किया कि वहाँ एक लड़का था जो किसी न किसी काम से बार बार घर में आ जा रहा था। दुबला पतला 24-25 की उम्र का होगा और मुझे घूर रहा था। पहले तो मैंने सोचा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है, पर जब मैंने गौर से देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मुझे पता नहीं क्यों उसकी इस बात पर गुस्सा आया। मैं हॉल से उठकर कमरे में आ गई। अगले दिन वही लड़का आशु के साथ खड़ा कुछ बात कर रहा था। आशु ने मेरी तरफ देखा, फिर वो दोनों बाहर चले गए। जब आशु लौटा तो मैंने पूछा, तू जिस लड़के से बात कर रहा था वो कौन है। तो आशु बोला, टेंट और खाने वगैरह का काम देख रहा है, उसका नाम अंकित है। क्या हुआ। ये सुनते ही मैंने कहा, पागल है तू कुछ भी बोल देता है, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसने पूछा, फिर पूछ क्यों रही हो। मैंने कहा, वो अंकित तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था क्या। आशु बोला, नहीं तो। मैं चुप हो गई और वो बाहर चला गया। मैं अपने शोहर को लेकर वैसे ही परेशान थी। अब ये सोचकर टेंशन होने लगी, पता नहीं कि ये अंकित आशु से क्या बात कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाड़ में जाए। शादी के अगले दिन अंकित आशु के साथ खड़ा था और उससे कुछ बात कर रहा था। मैं छत पर से देख रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देखकर आशु से बात कर रहा था। आशु भी मुझे देख रहा था। मैंने सोच लिया कि बस इस बार आशु अंदर आए, फिर से पूछ ही लेती हूँ। कुछ देर बाद जब आशु आया तो मैंने कहा, देख गुस्सा मत दिला, बस तू ये बता दे कि वो मेरे बारे में तुझसे पूछ क्या रहा था। इस पर आशु बोला, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूछा, क्यों। आशु बोला, आपको कौन से उससे कुछ बात करनी है। इस पर मैंने पूछा, अच्छा तू बता तो सही। आशु बोला, वो आपके बारे में पूछ रहा था कि नाम क्या है, कहाँ से आई हूँ। मैंने कहा, और तूने सब बता दिया। आशु बोला, हाँ। फिर मैंने कहा, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बहन के बारे में किसी को बता रहा है। इस पर आशु बोला, आपा कुछ गंदा थोड़ी पूछ रहा था, फिर मैंने उसे ये थोड़ी बताया है कि आप मेरी बहन हो। उसकी इस बात पर मैं चुप हो गई। तभी खालू आ गए और उन्होंने बताया कि हम लोगों की परसों की वापसी की टिकट है। तो मैं टिकट देखने लगी। वह टिकट देखते हुए आशु बोला, आप परसों तो चले ही जाएंगे, अगर उससे मिलकर बात करना चाहो तो कर लो। ये सुनकर दिल तो आया कि 2 थप्पड़ धर दूँ, पर सब वहीं थे इसलिए कुछ नहीं बोली। उसी शाम को मैं टहल रही थी, तभी मैंने नीचे झाँका तो अंकित वहाँ था। मैं झट से पीछे की हो गई, कुछ देर बाद फिर झाँका तो फिर वह वहीं था। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अब मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पतला सा सांवला सा उसने लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने उसे आवाज़ दे दी, ओ भाई तुझे परेशानी क्या है? वो चुपचाप रहा और वहाँ से हटा नहीं। मैंने कुछ देर बाद फिर उससे पूछा, आपसे बात करनी है। उसने कुछ देर बाद जवाब दिया। उसके बोलने के तरीके से एकदम जाहिर लग रहा था। मैंने पूछा, क्या बात करनी है, बोलो। उसने कहा, 2 मिनट के लिए पीछे वाली गली में आ जाओगी? ये सुनकर मेरा दिल तो हुआ उसके ऊपर ही कुछ फेंक दूँ। मैंने कहा, रुक आती हूँ 5 मिनट में। वो एकदम खुश हो गया। मैं नीचे गई, आशु को बुलाया और कहा, जरा मेरे साथ आ जा। आशु मेरा चेहरा देखकर समझ गया। मैंने गुस्से में सोच लिया था कि जाते ही कूट कर रख दूंगी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो खड़ा था। मैंने जाते ही उसे घुड़की देने के अंदाज में पूछा, हाँ अब बोल, क्या बोलना है? अभी मैंने उसे इतना ही कहा था। वो बोला, आपके फ़ायदे की ही बात है। मैंने पूछा, अच्छा ज़रा बताना। उसने कहा, जैसे ही उसने कहा कि आपको खुश कर दूंगा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने मारने को हाथ उठाया, वह पीछे को हट गया। उसने पीछे हटकर जो हरकत की मैं सुनने रह गई। आशु भी गई, खड़ा था चुपचाप। वो लड़का पीछे को हटा और अपना लोअर नीचे करके एकदम काला और लंबा लंड निकाल कर मुझे दिखा दिया और अपना हथियार हिलाते हुए बोला, मेरी जान अभी तो ये सो रहा है, खड़ा होकर 8.5 इंच लंबा और 2.5 इंच मोटा हो जाता है, अगर ले लोगी तो मज़ा आ जाएगा। बस ये बोलकर वो भाग खड़ा हुआ। मुझे काटो तो खून नहीं, मैं सन्न रह गई। मेरी चूत में सनसनाहट सी पैदा हो गई थी उसका लंड देखकर। फिर आशु मुझसे बोला, अब चलो आपा, आप पहले बोल दे दी तो इससे मिलने लेकर साथ लाई हो मुझे, तो मैं आपको मना ही कर देता। मैं बिना कोई जवाब दिए वहाँ से वापस आ गई। वहाँ से आने के बाद बार बार मुझे वही सीन याद आ रहा था। मैं चूत वाली लंड के लिए मचलने लगी। रात हो गई, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने आशु को बुलाया और पूछा, ये लड़का कुछ उल्टा सीधा भी पूछ रहा था मेरे बारे में। इस पर आशु ने बोला, आपा क्यों फालतू की बातें पूछ रही हो? आपको अगर उससे मिलकर बात करनी है तो कर लो, पास में ही उसके टेंट हाउस का गोदाम है। इतना कहकर वो सोने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे बूब्स एकदम टाइट हो गए थे। सारी रात मैं ये सोचती रही कि क्या ये करना सही होगा। दिल और जिस्म कह रहा था कि चुदवा ले चूत वाली। 3 साल से ज़्यादा हो गए थे। सुबह उठकर कपड़े चेंज किए, नाश्ता किया। अगले दिन 5 बजे की ट्रेन थी। मैंने हिम्मत करके आशु को बुलाया और पूछा, ये लड़का ठीक तो? बस इतना कहा था कि आशु बोला, आप टेंशन ना लो, जाहिल टाइप का है पर अच्छा है, उसका गोदाम भी सेफ है। आशु की ये बातें सुनकर मुझे शर्म सी आने लगी। मैंने कहा, क्या कह रहा है तू? उसके बाद आशु चला गया चुपचाप और आधे घंटे बाद आकर बोला, उसने 11 बजे बुलाया है। मैं तो तैयार थी, ठीक 11 बजते ही मैंने बुर्का पहना और अम्मी से कहा, मैं मामी से मिलकर आती हूँ, आशु के साथ जा रही हूँ। जब हम दोनों गोदाम में पहुँचे तो वहाँ काफ़ी लोग थे। आशु ने उसे फ़ोन लगाया और बात की। उसके बाद आशु बोला, उसके पापा आ गए हैं, थोड़ी दूर उसका घर है, 5 छत पर मिलना है तो आ जाओ, वो ऐसा बोल रहा है। इस पर मैं बोली, रहने दे, गाड़ी वापस ले ले। पर आशु बोला, एक बार चल कर देख लो, ठीक लगेगा तो बातें कर लेना, नहीं तो वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। आशु ने गाड़ी आगे खड़ी की। जब उसके घर पहुंचे तो मैंने देखा कि गेट में ताला लगा था, पर वह वहां भी खड़ा था। हमें देखकर अंकित पास आया। उसने आशु से बोला, पतली वाली गली में आ जा। जब हम वहां पहुंचे तब उसने बताया कि टाइम ही साला ख़राब है, गोदाम में पापा हैं, मम्मी नानी के यहाँ गई हैं और चाबी पापा के ही पास है। इस पर आशु ने कहा, फिर यार अंकित तू बात कहाँ करेगा इनसे? इस पर वो बोला, तू टेंशन ला ले, इस जीने की चाबी है मेरे पास, उधर दोनों भाई छत पर चोदेंगे इसे। इस पर मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने नज़रें झुका ली। हम तीनों छत पर पहुँच गए। छत पर आते ही अंकित ने मुझे बाहों में भर लिया। ये देखते ही आशु बोला, चल ठीक है मैं बाहर हूँ, मुझे बुला लेना। अंकित ने कहा, ठीक है। आशु गया तो उसने मेरा नकाब हटाया और मेरे होठों को चूसना शुरू कर दिया। पतला दुबला ज़रूर था पर उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। अभी हम एक दूसरे को स्मूच कर ही रहे थे कि आशु आ गया। आशु को देखते ही मैं फिर से अलग हो गई। आशु उसे जीने की ओर बुलाकर कुछ दिखाने लगा। फिर हम दोनों वहीं गए। अंकित आशु से बोला, यार ये सब नशेड़ी हैं, इनमें से एक मेरे चाचा का लड़का है, तू नीचे जाएगा तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए तू यहीं रुक। ये कहकर फिर वो मुझसे चिपक गया और स्मूच करने लगा। मुझे शर्म आ रही थी। आशु थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि आशु खुद मुझे यहाँ लाया है, क्या उसे पता नहीं होगा कि ये चोदेगा। यही सोचकर मेरी शर्म चली गई। बाद में मैंने अपने जिस्म की आग पर ध्यान लगाया और सोचा शर्म जाए भाड़ में। बस मैंने अंकित के लोअर में हाथ डालकर उसका लंड पकड़ लिया। उफ, सारे बदन में करंट दौड़ चुका था। जैसे ही मैंने उसका लंड पकड़ा, वो बोला, साली रंडी धीरे धीरे खुल रही है। उसकी इस बात पर मैंने कहा, धीमे बोल, कोई सुन लेगा। इस पर अंकित बोला, मेरी जान, चार मंजिल की छत पर है अपन, कोई नहीं सुनेगा, खुलकर बोल। अब मैं क्या बोलती उससे कि मैं आशु की वजह से बोल रही थी धीमे बोल। पर ये मर्दूद आशु को मेरा भाई समझ ही नहीं रहा था। उसने पहले मेरा बुरका उतारा, फिर सारे कपड़े और मुझे पूरी नंगी कर दिया। फिर वो मेरे दूध को चूस रहा था और दूसरे को मसल रहा था। वो मेरे मम्मो को इतनी ज़ोर से चूस और दबा रहा था कि मेरी आह निकल रही थी। ओफ हाय, अम्मी मर गई, प्लीज़ आराम से। मैंने आशु की तरफ देखा तो वह हमें ही तिरछी नज़र से देख रहा था। क्या देखकर मेरी शर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब तो बस मैंने अंकित से खुलकर मज़ा लेना शुरू कर दिया। चूसना हरामी ज़ोर ज़ोर से, आह कितना मज़ा आ रहा है। इस पर अंकित और ज़ोर से बोला, हाँ भैनचोद ले चूस। उफ अंकित, उफ मर गई भैनचोद साले, हट। मैं नंगी ही घुटने के बल बैठी और उसने अपना लंड मेरे मुंह में डाल दिया। उफ, कोई 5 मिनट तक उसका लंड चूसा तो वह ऐसा हो गया जैसे घोड़े का होता है। उसके बाद उसने मुझे पलंग पर लिटाया और मेरी चूत को चाटना शुरू कर दिया। आह आह की आवाज़ें आ रही थी। अंकित ने अपने लोड़े का टोपा मेरी चूत की फांकों पर रखकर धक्का दे मारा। दोस्तों, मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई, आह मर गई। वह बोला, आह आप डालना पूरा फाड़ दे मेरी चूत को। उसने फिर से झटका मारा, मेरी तो जान निकल गई। पूरी छत पर मेरी सिसकारियों की आवाज़ फैल रही थी। उसके बाद तीसरे धक्के में मेरी चूत उसका पूरा लंड खा गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार चूदी हूँ। फट फट की आवाज़ करते हुए लगते उसके धक्के और गले से निकलती गालियाँ, उफ मादर चूत, मेरी चूत को चुदाई चलती रही और कुछ ही देर में मैं झड़ गई। 5 मिनट बाद वह भी मेरी चूत में ही झड़ गया। इस तरह उसने मुझे एक बार और चूदा। और जब वो मुझे दूसरी बार चोद रहा था, वह छत पर लेटा था और मैं उसके लंड पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से झटके लगा रही थी। उसी समय आशु के फ़ोन पर अम्मी का फ़ोन आया। आशु ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया और मैंने कहा, 20 मिनट में आती हूँ। जब मैं अम्मी से बात कर रही थी, तब भी अंकित के लंड पर ही बैठी हुई थी और आशु पास में खड़ा होकर मेरे नंगे बदन और मेरे झूलते हुए बूब्स को घूर रहा था। अम्मी का फ़ोन काट कर मैंने मोबाइल आशु को दे दिया। मेरी कामुक सिसकारियाँ निकलने लगी। उसके बाद हम दोनों झड़ गए। मैंने उठकर कपड़े और बुरका पहना, आशु के साथ नीचे उतर आई। अब हम दोनों वापस घर आ चुके थे। उसके बाद अगले दिन ट्रेन से हम अपने घर आ गए। यारो, ये कहानी 2017 की है, थोड़ी लंबी हो गई, पर एक एक बात सच लिखी हुई है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे मेल में कमेंट करके ज़रूर बताएं।